गिनती अध्याय 14। अध्याय 14 में तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इसराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, वह इस जंगल ही में मर जाते, और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। और नून का पुत्र यहोशू और युपन्ने का पुत्र कालेब, जो देश का भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को तुम इधर उधर घूमकर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारे रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पत्थरवाह करो। तब यहोवा का तेज सब इसराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। गिनती 14 का 1-4 पद और 6-10 पद। वे लोग यहोशू और कालेब को पत्थरवाह करना चाहते थे। इन लोगों की ये बड़ी दुखदाई चूक थी। लोग बुरी तरह हार गए। परमेश्वर उन्हें पूरी आशीषों के प्रवेश द्वार पर ले आया था, अर्थात भरपूरी और समृद्धि के जीवन के द्वार पर। सब कुछ वहां सामने ही रखा था, उन्हें बस प्रवेश करके उस पर अधिकार करना था, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा कर चुका था, मैं वहां के निवासियों को तेरे सन्मुख से निकाल दूंगा, मैं तेरे सन्मुख ढांस भेजूंगा और वहां के निवासियों को निकाल दूंगा, तुम वहां जाकर देश को अपने अधिकार में कर लो। अब परमेश्वर उन्हें उस देश की सीमा पर ले आया है, आशीष और समृद्धि के देश के द्वार तक। यहां आकर इसराइल के संतान प्रतिज्ञा के उस देश में प्रवेश करने से चूक गए, क्योंकि उन्होंने विश्वास की अपेक्षा भय को अपने मन पर अधिकार दे दिया था। आप जब भी विश्वास के स्थान पर भय को शासन करने देते हैं, तब अविश्वास उत्पन्न हो जाता है और ये अविश्वास आपको उन सब बातों से वंचित कर देता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है और प्रतीक्षा में है कि आप उन्हें ले ले। आज बहुत से मसीही जन परमेश्वर द्वारा उनके लिए रखे हुए परिपूर्ण समृद्ध जीवन में प्रवेश करने से चूक गए हैं। उनका मसीह जीवन उतार चढ़ाव का है, एक दिन संपन्न तो दूसरा दिन आवश्यकताग्रस्त। आप नहीं जानते कि वे कब किस आत्मिक वृत्ति में हो। कभी वे ऊंचाइयों पर उड़ते हैं तो कभी भूमि पर भी रगड़ते हुए चलते हैं। उनका संपूर्ण मसीह अनुभव डामाडोल रहता है। उन्होंने आत्मा की भरपूर के उस जीवन में कभी प्रवेश नहीं किया है जो परमेश्वर अपनी संतानों में चाहता है। वे रोमियो की पत्री अध्याय 7 के संपूर्ण अनुभव में जी रहे हैं। उन्होंने अध्याय 8 में कभी प्रवेश नहीं किया है। उनका जीवन देहिक लालसाओं के संघर्ष में लगातार उलझा रहता है। जंगल में लगातार घूमना और भटकते रहना और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के समृद्ध देश में कभी प्रवेश न करना मिस्र पापों के दासत्व के पुराने जीवन को दर्शाता है और लाल सागर से निकलना बपतिस्मे तथा मसीह एवं परमेश्वर के साथ यीशु मसीह द्वारा नए जीवन में प्रवेश को दर्शाता है, जबकि जंगल विश्वासी के सामान्य विकास को दर्शाता है। अतः प्रतिज्ञा का देश मसीह में आपको प्राप्त होने वाले परिपूर्ण एवं समृद्ध जीवन को दर्शाता है। दुर्भाग्य से हमारे भक्ति गीतों ने प्रतिज्ञा के देश को स्वर्ग में एक स्थान बना रखा है और यर्दन को मृत्यु। हमारे गीतों में मुझे घर ले जाने को आने वाला सुंदर रथ नीचे हो, मैंने यर्दन के पार क्या देखा, स्वर्ग दूतों का दल मेरे पीछे चला आता है कि मुझे घर ले जाए। यर्दन नदी मृत्यु को दर्शाती है, मुझे यर्दन का ठंडा पानी अकेले पार करना पड़ेगा और तब मैं स्वर्ग में अर्थात परमेश्वर की महिमामय प्रतिज्ञाओं में प्रवेश करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसराइली यर्दन को पार करके प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर गए थे, परंतु वे अभी भी युद्ध कर रहे थे, जबकि स्वर्ग में कोई युद्ध नहीं करना होगा। यर्दन पार करके प्रतिज्ञा किए हुए देश में आने के बाद भी वे एक दो बार ए देश में पराजित हुए थे, वे गिबोनियों के द्वारा हराए गए, परंतु स्वर्ग में आप ना तो हराए जाओगे और ना छले जाओगे। यर्दन पुराने मनुष्यत्व की मृत्यु को दर्शाता है, पुराने स्वभाव को, मसीह के साथ मेरी मृत्यु को दर्शाता है। प्रतिज्ञा का देश वो जीवन है जिसका मैं अब आत्मा में आनंद ले सकता हूं। आत्मा में जीवन बिताना और मसीह यीशु में विजय का अनुभव प्राप्त करना। जंगल में भी इसराइलियों में युद्ध जीते थे, परंतु उन्हें स्थाई मूल्यों का कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ था। जब उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करके उस पर अधिकार करना आरंभ किया, तब उन्हें लाभ मिलना आरंभ हुआ। अब वे संपदा के अधिकारी थे। ये दुखदाई बात है कि अनेक मसीही जन अपना संपूर्ण मसीही अनुभव जंगल में घूमते भटकते हुए बिताते हैं, और इस प्रकार उनका मसीह जीवन लगातार दुखों को सहते रहने में बीतता है, मसीह आनंद में नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्धि और उसकी आशीष की भरपूरी का और उसके प्रेम का अनुभव करें जो आपके लिए रखे हुए हैं। परमेश्वर ने मसीह यीशु में और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए विजय का जीवन, आशीषों का जीवन, परिपूर्णता का जीवन उपलब्ध करा दिया है, परंतु अविश्वास ही के कारण अनेक विश्वासी उसमें प्रवेश करने से चूक जाते हैं। 10 भेदियों ने उन लोगों को भयउत्तर कर दिया, और जब यहोशू और कालेब ने लोगों को विश्वास के वचनों से उत्साहित करना चाहा, तो 10 भेदियों ने कहा, वहां तो दैत्य है, हम उनकी दृष्टि में टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं। परंतु यहोशू और कालेब ने कहा, वे हमारी रोटी ठहरेंगे। तब उन भेदियों ने कहा, उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है। यहोशू और कालेब ने फिर उनसे कहा, हम इसी समय प्रवेश करें, हम इस योग्य हैं। परंतु लोगों ने जो भय से ग्रस्त थे प्रवेश ना किया, और परमेश्वर के दोनों नबियों यहोशू और कालेब को जो उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे मार डालना चाहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। गिनती 14:11 पद। कुंजी ये है, ये विश्वास की कमी थी जिसने उन्हें परमेश्वर द्वारा उनके लिए रखी हुई आशीषों से वंचित किया। आपके लिए भी विश्वास की कमी ही आशीषें प्राप्त करने और विश्वास में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करती है। ओह, यदि मैं इतना अच्छा होता कि परमेश्वर मुझे आशीष देता। यदि मैं मधुर और दयावान होता तो मैं परमेश्वर की आशीष पाने के योग्य हो जाता। ये उनके विश्वास की कमी थी जिसने उन्हें उस स्थान से बाहर रखा। ये योग्यता से मिलने वाली कोई चीज नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, खड़े रहकर देख, मैं उन्हें मिटा डालूंगा। मूसा ने लोगों के लिए मध्यस्थता की। सो अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। गिनती 14:17-19 पर। प्रभु तू अब तक उनके साथ रहा है, आगे भी बना रहे। मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता रहा है और वो और मूसा परमेश्वर को उसकी सहनशीलता और महान दया और क्षमाशीलता की याद दिलाता रहा है, अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। गिनती 14:20। परमेश्वर उन्हें क्षमा प्रदान करना चाहता था। उसने मूसा की प्रार्थना का उत्तर दिया। मुझे ये पद बड़ा मन भावन लगता है, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। गिनती 14:21। परमेश्वर शपथ खाकर घोषणा करता है कि क्या होगा। मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। मैं कठिनाई से प्रतीक्षा कर पाता हूं। वो दिन कितना महान होगा जिसकी घोषणा परमेश्वर ने शपथ खाकर की है। जब ऐसा होगा तब मैं अवश्य वहां होना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि मैं वहां रहूंगा। मेरे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। कैसी महान आशा! सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। परमेश्वर ऐसा ही कर। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उनको वे कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, सो कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। सो उनसे कह कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। गिनती 14:22-28 पद। उन्होंने कहा, परमेश्वर हमें यहां ले आया कि हमारी संतान मर जाए और हमारी लोथें यहां जंगल में पड़ी रहे। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, जैसे तुमने कहा तुम्हारी लोथें जंगल में पड़ी रहेगी, परंतु तुम्हारी संतान, तुम कहते हो मैं उन्हें मरने के लिए यहां ले आया हूं, वे उस देश में जाकर उसे ले लेंगे। तुम लोगों में से केवल यहोशू और कालेब वहां जाने पाएंगे, क्योंकि वे प्रोत्साहन देने वाला संदेश लेकर आए थे। इसलिए लोगों ने पश्चाताप किया और कहा, हमने पाप किया है, हमें क्षमा कर, हम जाकर देश को ले लेंगे। मूसा ने कहा, ऐसा मत करो, पहाड़ पर कुछ कनानी और अमालेकी रहते हैं और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे साथ नहीं है, ऐसी कोशिश भी नहीं करना। परंतु ये लोग हटीले होकर ऊपर चढ़ गए और कनानी और अमालेकियों ने उन्हें मारना आरंभ कर दिया। ये बड़े दुख की बात है।